बारहवां अध्याय वैदिक युग की राजनीतिक दशा। पहला, राज्य में राजा की स्थिति। जब आर्य लोग इतिहास के रंगमंच पर प्रकट हुए तो वे राजनीतिक दृष्टि से संगठित हो चुके थे। उनके संगठन को जन कहते थे, जो एक परिवार के समान होता था। जन के सब व्यक्ति सजात सनाभ व एक वंश के समझे जाते थे। अपने जन को वे स्व कहते थे और अन्य जनों के व्यक्तियों को अन्य नाभि या अरण्य। आर्यों के अत्यंत प्राचीन जन प्रायः अनवस्थित दशा में होते थे, क्योंकि तब वे किसी प्रदेश पर अस्थायी रूप में बसे हुए नहीं होते थे। पर जब वे कहीं अस्थायी रूप से बस गए तो वह प्रदेश जनपद कहने लगा। वेदों में इसके लिए प्रायः राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। वैदिक संहिताओं से आर्यों के अनेक प्राचीन जनपदों, राष्ट्रों या राज्यों की सत्ता का पता चलता है, जिनमें भरत, तृत्सु, पुरु, श्रृंजय, साल्व, सीब, आर्जिकीय, कम्बोज, गांधार आदि प्रमुख थे। इनके शासन का क्या स्वरूप था, इस विषय पर भी वैदिक साहित्य द्वारा अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस अध्याय में वैदिक युग की शासन संस्थाओं का ही संक्षेप के साथ निरूपण किया जाएगा। वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया राजा होता था। सामान्यतया राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था, पर यह आवश्यक था कि विषय या प्रजा राजा का वरण करे। यदि राजा का पुत्र प्रजा की सम्मति में राजा के पद के योग हो तो प्रजा उसे ही राजा के रूप में वरण कर लेती थी, अन्यथा उसे अधिकार था कि वह राजवंश के किसी एक अन्य व्यक्ति को या कुलीन परिवारों अर्थात राजन्यों के किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वरण कर सके। राजा के वरण या निर्वाचन को सूचित करने वाले कतिपय वैदिक मंत्रों को यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा। एक मंत्र में कहा गया है, प्रजा विषय अर्थात विषय राज्य के लिए तुम्हें वरण करती है। प्रजा राज्य के लिए तुम्हें वरण करती है। सब दिशाओं के लोग तुम्हारा वरण करते हैं। तुम राष्ट्र रूपी शरीर के सर्वोच्च स्थान पर आसीन रहो और वहां रहते हुए उग्र शासक के समान सब में संपत्ति का विभाजन करो। यह इस मंत्र से स्पष्ट है कि प्रजा जनता या विषय राजा का वरण करती थी और सब लोगों द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई व्यक्ति राजा के पद को प्राप्त कर सकता था। वरण का अर्थ चुनना भी है, पर इस शब्द के स्वीकारार्थक होने में तो संदेह ही नहीं किया जा सकता है। राजा के वरण या निर्वाचन के संबंध में अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र बड़े महत्व के हैं। सहर्ष हम तुम्हारा अपने अंदर आवाहन करते हैं, तुम हमारे बीच में अविचल रूप से व ध्रुव होकर स्थिर रहो। सब प्रजा तुम्हें चाहें, तुम्हें राष्ट्र का अधिकार कभी छीनना न पड़े। यहीं रहकर तुम उत्कर्ष करो, कभी तुम्हारा पतन न हो, कभी तुम विचलित न हो। इंद्र के समान तुम ध्रुव होकर रहो और इस राष्ट्र का धारण करो। ये पर्वत सुदृढ़ रूप से स्थिर है, यह पृथ्वी भी स्थिर है, यह सारा जगत ध्रुव रूप से स्थिर है, यह धीव लोक भी भली भांति स्थिर है। इसी प्रकार प्रजाओं का यह राजा भी ध्रुव रूप से स्थिर रहे। राजा वरुण देव बृहस्पति इंद्र और अग्नि इस राजा को ध्रुव रूप से राष्ट्र का धारण करने की शक्ति दे। अथर्ववेद के इन मंत्रों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। जब प्रजा किसी राजा का वरण करती थी तो स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा होती थी कि जिस व्यक्ति को उसके गुणों के कारण राजा स्वीकार किया गया है वह ध्रुव रूप से राष्ट्र का शासन करे। वह पृथ्वी पर्वत और द्यु लोक आदि के समान अपने पद पर स्थिर रहे। वरुण बृहस्पति इंद्र आदि देवता उसे राजकीय पद पर अस्थायी रूप से कार्य कर सकने की शक्ति दे। पर राजा से राष्ट्र का अधिकार छीना भी जा सकता था। मां त्वद्रष्टार्म धी भ्रष्टम शब्द इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। राजा के पद के लिए केवल ऐसे व्यक्ति का ही वर्णन किया जाता था जो उसी जन का हो जिससे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए अथर्ववेद में एक स्थान पर कहा गया है, मैं राजा राष्ट्र का अपना व्यक्ति हूँ, मैं अपने को अवश्य उत्तम बनाऊंगा। एक अन्य मंत्र में राजा को अंतर्भू कहा गया है, जिसका अभिप्राय है कि वह अपने अंदर का है। यजुर्वेद में भी कतिपय ऐसे मंत्र विद्यमान हैं जो प्रजा द्वारा राजा के वर्णन किए जाने का निर्देश करते हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सब देव लोग महान फल के लिए, सबसे ज्येष्ठ होने के लिए, महान जनराज्य के लिए और इंद्रों के भी इंद्र होने के लिए इस व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा से विरहित करते हैं। प्रजा राजा का वर्णन इसी का प्रयोजन से करती है कि वह सब प्रकार की विपत्तियों से त्राण करे, वह सबसे ज्येष्ठ होकर रहे, उसके नेतृत्व में जनता का प्रभुत्व कायम रहे और वह इंद्रों का भी इंद्र बनकर रहे। यजुर्वेद के इस मंत्र में ऐसे राजा की देवजनों उत्तम पुरुषों द्वारा स्वीकृति व नियुक्ति का निर्देश विद्यमान है। वैदिक युग में प्रजा जिस व्यक्ति को राजा के पद पर वरण करती थी उससे वह यही आशा रखती थी कि वह ध्रुव रूप से राष्ट्र का शासन करेगा। उसे किसी निश्चित अवधि के लिए राजा नहीं बनाया जाता था। इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है, हे राजन, तू सुप्रसन्न रूप से राष्ट्र में 10वीं अवस्था तक शासन करता रहे। साल से ऊपर की आयु को 10वीं अवस्था कहते हैं। राजा से वैदिक काल में यही आशा की जाती थी कि वह 10वीं अवस्था तक अर्थात वृद्धावस्था तक राष्ट्र के शासन का संचालन करता रहेगा। पर ऐसे अवसर भी उपस्थित हो सकते थे जबकि राजा 10वीं अवस्था तक राष्ट्र का शासन न कर सके। कतिपय कारणों से राजा को निर्वासित भी कर दिया जा सकता था और यदि जनता उसे पुनः राजा के पद पर अधिष्ठित करना चाहे तो उसे निर्वासन से वापस बुलाया जा सकता था। अथर्ववेद का एक मंत्र है, वह जो अन्य क्षेत्र में विचरण कर रहा है या वहाँ पर अवरुद्ध है, वह सेन द्वारा पराय स्थान से पुनः यहाँ ले आया जाएगा। अश्विन उसके लिए मार्ग को सुगम कर देंगे, सब सजात उसके चारों ओर एकत्र होंगे। यह मंत्र बड़े महत्व का है। इसमें पराय क्षेत्र व प्रदेश में विचरण करते हुए या कारणवश वहाँ अवरुद्ध हुए राजा को सेन द्वारा अपने राष्ट्र में वापस लाए जाने का उल्लेख है। वहाँ सेन का अभिप्राय संभवतः गरुड़ पक्षी से है जो प्राचीन भारत के अनेक राजवंशों द्वारा राज चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता था। इस मंत्र में संभवतः एक ऐसे राजा का निर्देश किया गया है जिसे या तो किसी जनपद द्वारा अवरुद्ध कर लिया गया था और या जिसे अपने राष्ट्र से निर्वासित कर दिया गया था। सेन रूपी राज चिन्ह के साथ उसे पुनः अपने राष्ट्र में वापस लाया जाता है और उसे सजात लोग पुनः उसे घेर लेते हैं और अथर्ववेद के एक मंत्र में यह कहा गया है, तुझे हम फिर से बुलाते हैं, तू अपने पद पर विराजमान हो, प्रजा तुझे राजा बनाती है, तू श्रेष्ठ पुरुषों का पालन कर। विषह या प्रजा जिस राजा का वरण करती थी उससे वह कतिपय कर्तव्यों के पालन की आशा भी रखती थी। इन कर्तव्यों में सर्वप्रधान जनता को धन और वैभव का प्राप्त कराना था। प्राचीन जनपदों में भूमि आदि संपत्ति पर व्यक्तियों का स्वत्व न होकर संपूर्ण जन का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। भूमि पशु आदि से जो आर्थिक उत्पादन होता था उसका सब विषह में न्यायपूर्वक वितरण करना एक महत्व का कार्य था। यह राजा के नेतृत्व में ही संपन्न होता था। इसीलिए अथर्ववेद में राजा को धन संपत्ति का प्रदान करने वाला और सुदृढ़ रूप से धन अर्थात वसु का विभाजन करने वाला कहा गया है। राजा के इस कर्तव्य पालन के बदले में प्रजा उसे बलि प्रदान करती थी। इसीलिए ऋग्वेद में राजा को बलि अर्थात कर लेने का एकमात्र अधिकारी कहा गया है। हम ध्रुव रूप राजा को ध्रुव हवियों द्वारा संतुष्ट करते हैं। राजा ही अकेला विषह से बलि प्राप्त करने का अधिकारी है। राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसमें धन व आर्थिक पैदावार का विभाजन करता है और उसके बदले में प्रजा उसे बलि अर्थात कर प्रदान करती है। कर के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर राजा प्रजा का दास्य स्वीकार करता है। बाद के नीति ग्रंथों का यह विचार वैदिक युग में भी विद्यमान था। इसी कारण अथर्ववेद में राजा को राष्ट्रवृत्त की संज्ञा भी दी गई है। राष्ट्र में राजा वृत्त और प्रजा स्वामी, यह विचार अथर्ववेद के इस मंत्र में भी प्रकट किया गया है कि राजा प्रजा या विषह का अनुचर अर्थात अनुचलन करने वाला होकर रहता है। राजा का वरण विषह द्वारा किस ढंग से किया जाता था इस संबंध में कोई निर्देश वेदों में नहीं मिलते, पर अथर्ववेद में राजानः राजकृतः अर्थात राजा बनाने वाले राजाओं का उल्लेख मिलता है और दीवान, रथकार, कर्मार, सूत तथा ग्रामीण को राजकृतः कहा गया है। ग्रामीण जनपद या राष्ट्र के अंतर्गत ग्रामों के मुखिया को कहते थे और दीवान, रथकार, कर्मार और तथा सूत विविध प्रकार के शिल्पियों की संज्ञा थी। वैदिक युग के समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का पृथक वर्ग के रूप में विकास नहीं हुआ था। उस समय धार्मिक विधि विधान व कर्मकांड अत्यंत सरल थे और उनका अनुसरण कराने के लिए किसी पृथक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक आर्य योद्धा होता था और युद्ध के समय शस्त्र धारण कर रणक्षेत्र में उतर आता था, पर फिर भी समाज में रथी या रथकार विशेष महत्व रखते थे। रथी विविध प्रकार के शिल्पी और ग्रामीण लोग ही संभवतः राजकृत हुआ करते थे और वे ही राजा के वरण का महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया करते थे। राजकर्तारः राजानः, जब किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वरण कर लेते थे तो राजा के चिन्ह के रूप में उसे वे एक मणि प्रदान किया करते थे। यह मणि संभवतः एक पर्ण पत्ते के रूप में होती थी। राज शक्ति को सूचित करने के लिए राजा इस पर्ण शाखा को धारण करता था। इसीलिए अथर्ववेद में राजा के मुख से यह प्रार्थना कहाई गई है, हे पर्ण, ये दीवान, रथकार और मनीषी कर्मार व मेरे चारों ओर उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें। हे पर्ण, सूत ग्रामणी व राजा कृतः, राजा और मेरे चारों ओर उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें। इस मंत्र में पर्ण स्पष्ट रूप से एक ऐसा राज चिन्ह है जिसे संबोधन कर राजा राष्ट्र के प्रमुख पुरुषों व सर्वसाधारण जनों के सहयोग से प्रार्थना करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा के राज्याभिषेक का जो वर्णन किया गया है उससे वैदिक साहित्य के इस निर्देश पर अधिक विस्तार से प्रकाश पड़ता है। वहाँ भी राजा की पीठ पर दंड द्वारा आघात कर उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण कराया जाता है और रत्नी लोग उसे रत्न हवि प्रदान करते हैं। ये रत्नी लोग ही राजा को राज चिन्ह का सूचक रत्न प्रदान किया करते थे जिसे अथर्ववेद में पर्णमणि नाम से कहा गया है। वैदिक युग में राज्याभिषेक के समय राजा को व्याघ्र चर्म पर बिठाया जाता था। अथर्ववेद में लिखा है, तू स्वयं व्याघ्र है, इस व्याघ्र चर्म पर बैठकर सब दिशाओं में विक्रम कर, सब विषह तुझे चाहें। जब राजा राजसिंहासन पर आसीन हो जाता था तो सब जलों से उसका अभिषेक किया जाता था। एक वैदिक मंत्र के अनुसार तुझे हम सब जलों के वर्चस्व से अभिसंचित करते हैं। ये जल संभवतः जनपद या राष्ट्र की सब नदियों व जलाशयों से लिए जाते थे। जैसी प्रथा की जैसी प्रथा की भारत में बाद में भी जारी रही। राज्याभिषेक के समय राजा से यह कहा जाता था कि यह राज तुम्हें कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए और पुष्टि के लिए सौंपा गया है। तुम इसके यंता अर्थात संचालक, नियामक और ध्रुव रूप से धारण करता हो। राजा भी इस अवसर पर विषह के साथ एक ढंग का इकरार करता था, जिसके अनुसार वह स्वीकार करता था कि यदि मैं विषह के प्रति द्रोह करूं तो मैं अपने जीवन, अपने सुकृत पुण्य कर्म फल और अपनी संतान सबसे वंचित किया जाऊं। इस प्रकार विषह द्वारा वरण किए जाने पर और उसके साथ एक निश्चित इकरार कर के जो राजा राष्ट्र का शासन करता था वह निरंकुश व स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। उसकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ के सदृश होती थी और इसी कारण वैदिक युग के इन राष्ट्रों के शासन को जान राज अर्थात जन या जनता का राज कहा जाता था।